नमस्कार श्रोताओं, घड़ी में बज चुके हैं 8:30 और समय हो गया है आपके पसंदीदा खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आकाशवाणी के स्टूडियो से मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए सुखद होगा क्योंकि हम आपको सुनाएंगे कि कैसे चीन में भारत के युवा खिलाड़ियों ने मलेशिया की हेकड़ी गुम की और दुबई की तपती गर्मी में कल शेफाली वर्मा ने कैसे बांग्लादेशी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए। इसके अलावा अमरीकी ओपन टेनिस का रोमांच और खेल मंत्रालय के कुछ बड़े फैसलों पर भी रहेगी नजर। तो चलिए बिना देर किए रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों का। भारत मलेशिया को 3-1 से हराकर जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। महिला टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत कल बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एलेना रायबकीना और आर्याना सबालेंका महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल का गठन किया। 20 निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर यानी कि जूनियर एशिया हॉकी कप से। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। पूरे मैच का हाल विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान अनमोल इक्का के 2 गोल की मदद से मौजूदा चैंपियन भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराकर लगातार 4th time पुरुष जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनमोल ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। इसके साथ ही पूरे टूर्नामेंट में अनमोल के 16 गोल हो गए हैं। गोलकीपर विवेक लाकड़ा ने भी 1 पेनल्टी स्ट्रोक समेत कई शानदार बचाव करके भारत का दबदबा बनाए रखा। आज के पूरे मैच पर नजर डालें तो टीम ने आक्रामक शुरुआत की। अजीत यादव पहले 2 मिनट में 2 बार मलेशियाई सर्कल में घुसे, भारत को जल्दी ही 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले। हालांकि मलेशिया के गोलकीपर अमसियार मोहम्मद आदिब ने उन्हें गोल में बदलने नहीं दिया। पहले क्वार्टर के आखिरी मिनट में मलेशिया गोल करने के करीब पहुंचा, पर भारतीय टीम ने उसका प्रयास नाकाम कर दिया। इस बीच भारत को 16th मिनट में 4th पेनल्टी कॉर्नर मिला। कप्तान अनमोल ने इसे गोल में बदलकर भारत को बढ़त दिलाई। मलेशिया को भी 1st पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारत ने उसके इस प्रयास को भी नाकाम कर दिया। भारतीय गोलकीपर लाकड़ा ने 34th मिनट में गोल के 2 प्रयासों को नाकाम किया। 4th quarter में भारत के लिए सुखविंदर ने 2रा गोल किया। भारत को 54th मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर मलेशिया ने वीडियो रेफरल लिया, लेकिन वीडियो रेफरी ने मूल फैसला कायम रखा। अनमोल ने इस पर गोल करके भारत की बढ़त 3-0 की कर दी। आखिरी सीटी बजने से 24 मिनट पहले मलेशिया को 8th पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे एम राहुल ने गोल में बदला। भारत की नजरें अब लगातार 4th और कुल 6 खिताब जीतने पर है। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को 4-1 से पराजित किया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
तो क्या बात है, भारतीय युवा खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखलाया है, तो जहां लड़के फाइनल में पहुंच चुके हैं, वहीं हमारी जूनियर महिला हॉकी टीम भी कहां पीछे रहने वाली थी। कल उनका सेमीफाइनल मुकाबला दक्षिण कोरिया से होना है। और आपको याद दिला दूं कि पिछले मैच में हमारी इन शेरनियों ने पाकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया था। पूजा मलिक ने तो गोलों की झड़ी लगाते हुए हैट्रिक ही बना डाली। तो हमारे तरफ से भी टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं उस खेल की जो भारत के रग रग में बसता है, यानी कि क्रिकेट। भारत की महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। दुबई में कल पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। तो आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट और जानते हैं कि शेफाली वर्मा की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत कैसे यह मैच भारत के पक्ष में हुआ।
India finishing things off in style. They haven't edged into the final. They have marched in, ruthless without rushing. That is how India have taken this semi-final away.
सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के अर्धशतक की बदौलत 7 बार चैंपियन रह चुकी भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया और रविवार को होने वाले महिला एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। शेफाली ने 7 चौके और 3 छक्के सहित 64 रन बनाए। कल के मैच में अन्य भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष भी शुरुआत में धीमी रही, लेकिन उन्होंने 16 गेंद में 21 रन बनाकर महत्वपूर्ण रन जोड़ने में सफलता हासिल की। वहीं प्रतिका रावल ने 20 रन का योगदान दिया। कप्तान हरमनप्रीत ने पारी के अंत में 2 छक्के लगाए। पिच की परिस्थितियां भी काफी चुनौतीपूर्ण थी, बावजूद इसके शेफाली ने 40 गेंद की आक्रामक पारी की बदौलत टीम को 6 विकेट पर 149 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान शेफाली को 3 बार जीवन दान भी मिला, जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। बांग्लादेश की टीम के लिए 150 रन के लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल रहा। टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 109 रन ही बना सकी। उसके लिए शौरना अख्तर नाबाद 22 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रही। दिलारा अख्तर ने 21 और कप्तान निगार सुल्ताना ने 19 रन बनाए। भारत के लिए अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 और नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट लिए, जबकि श्री चरणी और प्रेमा रावत को 1-1 सफलता हाथ लगी। भारत फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हो रहे दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से खेलेगा। मनोज, स्पोर्ट्स कैन।
तो श्रोताओं, सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रनों से हरा दिया भारत ने, लेकिन यह मैच इतना आसान नहीं था जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में सुना कि दुबई की पिच बड़ी टेढ़ी थी। तो फिर ये करिश्मा कैसे हुआ, हमारे सहयोगी मनोज ने इस दिलचस्प रिपोर्ट में बताया है। बांग्लादेश ने शेफाली को 3 बार जीवन दान दिया और शेफाली ने दिखा दिया कि क्रिकेट में कैच छोड़ोगे तो मैच तो छूटेगा ही। अब रविवार को होने वाले फाइनल पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। चलिए क्रिकेट की पिच से सीधे आपको ले चलते हैं अमरीकी ओपन टेनिस के कोर्ट पर, जहां मुकाबला अब आर पार का हो चुका है। महिला सिंगल्स में बड़ा धमाका हुआ है। कजाकिस्तान की दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबकीना ने घरेलू स्टार कोको गॉफ को हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। अब फाइनल में उनका मुकाबला होगा मौजूदा चैंपियन और दुनिया की सबसे आक्रामक खिलाड़ियों में से एक आर्याना साबालेंका से। तो यह मैच देखने लायक होगा, इसे मिस मत कीजिएगा। हालांकि आपको बता देना चाहूंगी कि सेमीफाइनल में एलेना ने चौथी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ को 3-6, 6-4, 6-4 से हराया। इससे पहले बेलारूस की साबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। महिला डबल्स की बात करें तो फाइनल में आज रात कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड की चेक अमेरिकी जोड़ी का मुकाबला अमेरिका की रॉबिन मॉन्टगोमरी और एश्लीन क्रूगर से होगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज रात जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला रूस के कारेन खाचानोव से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में 2 अमरीकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब श्रोताओं, आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी बताते हैं। कहते हैं ना कि अपनी प्रतिभा को पहचान कर कोई भी अगर उस पर कड़ी मेहनत करता है और निखारने की कोशिश लगातार करता है तो एक ना एक दिन उसे बड़ी सफलता जरूर मिलती है। नवांग सेरिंग की कहानी कुछ ऐसी ही है। नवांग ने लद्दाख मैराथन जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। नवांग सेरिंग ने लद्दाख मैराथन में 122 किलोमीटर सिल्क रूट अल्ट्रा की दूरी को 12 घंटे 12 मिनट और 18 सेकंड में पूरा कर रिकॉर्ड बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया। सेरिंग का यह पहला प्रयास था और पहले ही प्रयास में वह चैंपियन बनकर निकले हैं। नवांग ने अपनी सफलता का श्रेय अपने सभी कोचों, सहयोगियों और प्रशासन को दिया है। लद्दाख मैराथन जीतने के बाद उन्होंने युवाओं से क्या अपील की, आइए सुनते हैं।
अपना टैलेंट वेस्ट मत कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग रनिंग करो, एक अच्छा सा टैलेंट होता है, या तो चीज का टैलेंट होता है उसमें वो पार्टिसिपेट कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए, अपना हुनर दिखिए और आगे बढ़िए।
तो नवांग की यह सफलता निश्चित रूप से उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अभावों के बीच बड़ी उपलब्धि हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो खेल के मैदान से अब बाहर निकलते हैं और खेल के दफ्तरों से की तरफ चलते हैं, जहां से कुछ बड़ी खबरें हैं आ रही हैं। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों में साफ सुथरे चुनाव कराने के लिए एक 20 सदस्यीय राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल यानी कि एनएसईपी का गठन किया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें देश के दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल है, ताकि चुनावी अंपायरिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। इस साल भारतीय ओलंपिक संघ और फुटबॉल महासंघ के बड़े चुनाव होने हैं, जिन पर इस पैनल की कड़ी नजर होगी। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ के लिए खेल मंत्रालय से एक अच्छी और राहत भरी खबर आई है। मंत्रालय ने विशेष छूट देते हुए आईओए को अपनी 16 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को वैसे ही जारी रखने की अनुमति दे दी है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति चाहती थी। फिलहाल संघ की कार्यकारी परिषद 16 सदस्य हैं। परिषद में 16 सदस्य हैं जिनमें भारत में आईओसी के पदेन सदस्य भी शामिल हैं। उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को अपने कामकाज के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय और चार्टर और नियमों का मुख्य रूप से पालन करना होगा। अब चलते हैं दिल्ली के हमारे नन्हे और युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत ही प्यारी और मददगार खबर की तरफ। अगर आप दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स सेंटर या स्टेडियम में रोज पसीने बहा रहे हैं तो दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत अब जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी ताकि पैसों की कमी खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के आड़े ना आए और सचमुच यह ग्राउंड लेवल पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन और सराहनीय कदम है। दरअसल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई थी जहां दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रास रूट ट्रेनिंग सपोर्ट असिस्टेंट शुरू करने की मंजूरी दी। इस नई पहल के अंतर्गत दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स सेंटरों और स्टेडियमों में नियमित रूप से ट्रेनिंग लेने वाले योग्य युवा खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी और इसका उद्देश्य उन आर्थिक बाधाओं को दूर करना है जो ट्रेनिंग में रुकावट डाल सकती है और यह पक्का करना है कि युवा खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर से ही लगातार ट्रेनिंग मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई सहायता योजना मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना की पहुंच को जमीनी स्तर तक बढ़ाती है। नई व्यवस्था के तहत हर सरकारी स्पोर्ट्स सेंटर या स्टेडियम में नियमित रूप से एनरोल किए गए ट्रेनीज में 25% तक को सहायता दी जाएगी। आमतौर पर किसी एक स्टेडियम में सेंटर में ज्यादा से ज्यादा 100 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ज्यादा ट्रेनीज वाले बड़े स्टेडियमों में बजट की उपलब्धता के आधार पर यह सीमा 150 खिलाड़ियों तक बढ़ाई जा सकती है। इस योजना में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 21 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल होंगे। लाभार्थियों का चयन खेल में प्रदर्शन और क्षमता, नियमित उपस्थिति और अनुशासन और आर्थिक जरूरत के आधार पर किया जाएगा। योग्य खिलाड़ियों को तय शर्तें पूरी करनी होंगी जिनमें एनरोलमेंट को और कम से कम 80% उपस्थिति शामिल हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाभार्थियों के चयन के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया होगी जिसमें हर तिमाही उनके प्रदर्शन, उपस्थिति और अनुशासन की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली से एक और खबर है कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि DDCA ने 2025-26 सीजन के लिए क्लबों और खिलाड़ियों को कुल 1,43,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी है। एसोसिएशन ने इस बार सभी कैटेगरी में पुरस्कार राशि में 10% की बढ़ोतरी की है। ये पुरस्कार गुरुवार को यानी कि कल अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित सालाना पुरस्कार वितरण समारोह में दिए गए। रोहन जेटली ने क्या कहा कि DDCA दिल्ली में क्रिकेट को हर स्तर पर मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।
ये एक बड़ा एनुअल फीचर है जिसमें हमारे कोई 1800 प्लस मैचेस होते हैं दिल्ली शहर में क्लब लेवल पे। नॉर्थ इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है हॉट वेदर टूर्नामेंट जिसकी विनिंग अमाउंट इज अमंग द हाईएस्ट इन द कंट्री। क्लोज टू अराउंड 2.5 करोड़ इज गिवन आउट एज प्राइज मनी टू अपकमिंग क्रिकेटर्स और बच्चों में टैलेंट है जितने बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको यहाँ पे अक्नोलेज करा जाता है, उनका सम्मान करा जाता है और विनिंग क्लब्स के थ्रू आउट द ईयर कमिटेड परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन की केवल एक अक्नोलेजमेंट।
तो श्रोताओं, आज के स्पोर्ट्स स्कैन में खेल की दुनिया की हलचल बस यहीं तक। आपको क्या लगता है, क्या संडे को हमारी महिला क्रिकेट टीम और पुरुष हॉकी टीम दोनों एशिया कप का खिताब घर ला पाएंगी? अपनी राय हमें आप जरूर बताइएगा। अपनी राय और सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल sportsscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।